वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अभिमन्यु अपने कमरे में था और अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। अभिमन्यु ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां समर्थ नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमन्यु ने समर्थ का फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम हमें इस समय फ़ोन क्यों कर रहे हो, हम अभी थोड़े व्यस्त हैं ऑफिस के काम में। समर्थ ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तुम अपने ऑफिस के काम में ही तो व्यस्त रहते हो हमेशा। खैर अब तुम ये अपनी आदत थोड़ी बदल लो और भूलो मत कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तुम्हें काम को अपनी प्राथमिकता छोड़कर अपनी भाभी को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी, समझ रहे हो ना। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हमें यही बताने के लिए फ़ोन किया है क्या। समर्थ ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हमने तो तुम्हें तुमसे यही पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अब शादी में तो सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है तो तुम फटाफट बताओ कि हमारी बैचलर्स पार्टी कब है। मैं तो सोच रहा था कि कल ही तुम हमें बैचलर्स पार्टी दे दो, क्योंकि उसके बाद तुम अपनी शादी की तैयारी में और ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे पास अच्छा बहाना भी हो जाएगा। अभिमन्यु ने समर्थ की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे बाबा तुम्हें बैचलर पार्टी की इतनी जल्दी क्यों है, और अब हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं हो रही, हमने शादी की तारीख आगे बढ़वा दी है, अब शादी एक हफ्ते में नहीं बल्कि एक महीने बाद है। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोला, क्या तुमने तारीख आगे बढ़वा दी, लेकिन क्यों। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी आंखों के सामने इप्सिता का चेहरा आने लगा। उसने समर्थ को मनाते हुए कहा, तुम ये सब छोड़ो, हम तुम्हें पूरी बात बाद में बता देंगे, अभी तुम फ़ोन रखो। समर्थ ने ज़िद करते हुए कहा, नहीं नहीं हमें अभी जानना है, बताओ आखिर बात क्या है, तुमने तारीख आगे क्यों बढ़वाई है, हमें बताओ वरना हम ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। अभिमन्यु ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, हम तुम्हारी ये जिज्ञासा की आदत से बहुत परेशान हैं। समर्थ ने और भी ज़्यादा जिज्ञासु होते हुए कहा, जब तुम हमें अच्छी तरह से जानते हो उसके बाद भी इस तरह के सवाल क्यों करते हो, चलो जल्दी से हमें बताओ कि आखिर बात क्या है। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था भाभी जी से बात करने के लिए, तुमने उनसे बात की। अभिमन्यु ने इप्सिता के उदास चेहरे को याद करते हुए कहा, हाँ बात की थी मैंने, मगर इप्सिता ने हमें कुछ भी नहीं बताया। समर्थ बड़ी ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था और उसने पूछा, क्या उन्होंने तुझे कुछ भी नहीं बताया, तो फिर तुमने तारीख आगे क्यों बढ़ाई। अभिमन्यु ने कहा, असल में बात यह है कि इप्सिता अपने फाइनल एग्जाम देना चाहती है जो कुछ ही दिनों में है, और शादी की वजह से वो अपने एग्जाम नहीं दे पा रही थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तक उसने हमसे ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन हमने उसके दोस्त नंदिनी से बात की और उसने हमें पूरी बात बताई। समर्थ ने जैसे ही नंदिनी का नाम सुना उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, नंदिनी, अरे हाँ वही जो उस दिन भाभी के साथ आई थी। अभिमन्यु ने कहा, हाँ वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसने हमें पूरी बात बताई, इसीलिए हमने माँ से आकर बात की और बहुत मुश्किल से माँ हमारी बात से सहमत हुई, तब जाकर ही शादी की तारीख आगे बढ़ी। हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दबाजी में शादी होने की वजह से इप्सिता की एग्ज़ाम रह जाएँ और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बचताए और शादी के बाद भी खुश ना हो। समर्थ ने जब अभिमन्यु की पूरी बात सुनी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया और उसने अभिमन्यु को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं और तुम पहले से ही भाभी की इतनी केयर करने लगे, तुम तो अभी से उनका बड़ा ध्यान रख रहे हो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अवंतिका के बाद तुम किसी के बारे में भी इतना सोचोगे। अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया, उसका चेहरा उतर गया और अवंतिका का नाम सुनते ही वो जैसे किसी गहरी सोच में चला गया। समर्थ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वैसे चलो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि तुम अभी से अपनी वाइफ के बारे में इतना सोच रहे हो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उस अवंतिका की वजह से तुम अब कभी दोबारा किसी लड़की पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे। जैसे ही अभिमन्यु ने दोबारा समर्थ के मुँह से अवंतिका का नाम सुना वो इरिटेट होकर बोला, समर्थ हमसे बात करते समय तुम फालतू लोगों के नाम लेकर हमारा मूड खराब मत किया करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमें उसके नाम से भी कितनी जलन होती है, फिर भी तुम बार बार उस लड़की का नाम ले रहे हो, फोन रखो अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। समर्थ समझ गया कि अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया है, वो सॉरी बोलते हुए बोला, आई एम सॉरी अभी, एक्चुअली मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, वो तो ऐसे ही बात बात में मैंने बोल दिया। अभिमन्यु ने ठीक से समर्थ की पूरी बात सुनी भी नहीं और उसने दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया। समर्थ फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, शिट, क्या ज़रूरत थी अवंतिका का नाम लेने की, शायद मैंने अभी को नाराज़ कर दिया। समर्थ ने तुरंत अभिमन्यु को दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की, वो अभी उसका नंबर डायल कर रहा था लेकिन अभिमन्यु ने अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया और उसका फ़ोन पिकअप ही नहीं किया। वो फ़ोन साइड में रखकर वहीं सोफे की बैक हेड से टेक लगा लिया और किसी गहरी सोच में डूब गया। अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, उसने सोफे पर टेक लगाया और अपनी आँखें बंद कर ली। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था जैसे कि वो किसी के बारे में सोच रहा है, शायद वो अवंतिका के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन सुबह सूर्यवंशी हवेली में इप्सिता
नंदिनी, उदय और अपनी माँ पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सब ब्रेकफास्ट करने में व्यस्त थे। तभी इप्सिता ने अपनी माँ पिता की तरफ देखा। वे दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उदय ने इप्सिता की तरफ देखकर उनसे बात शुरू करने का इशारा किया। इप्सिता ने अपनी पलकें झपकाई और अपने माँ पिता की तरफ देखकर बोली, माँ पिता, हमें आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। इप्सिता की आवाज़ सुनते ही उसके माँ पिता दोनों उसकी तरफ देखने लगे। इप्सिता के पिता ने बड़े ही प्यार से पूछा, बोलिए इप्सिता, क्या बात करनी है आपको हमसे? इप्सिता की माँ उसे घूरते हुए देख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उन्हें पता है कि इप्सिता क्या बात करने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसके बीच में नहीं बोली और उन्होंने इप्सिता को ही पहले बोलने दिया। इप्सिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ पिता, असल में अब जब शादी की तारीख एक महीने बाद की हो गई है तो फिर हम अपने एग्जाम देने के लिए कॉलेज जा सकते हैं ना? एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 15 दिन बाद एग्जाम है और 5-6 दिन में हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ आ जाएंगे और वैसे भी कल नंदिनी यहाँ से जा रही है, तो अगर हम उसके साथ ही चली जाएं तो कैसा रहेगा? हमें नंदिनी का साथ भी मिल जाएगा और हम उसी के साथ फिर शादी के समय पर वापस भी आ जाएंगे। इप्सिता के पिता ने इप्सिता की माँ की तरफ देखा। इससे पहले इप्सिता के पिता कुछ बोल पाते, उससे पहले ही इप्सिता की माँ ने इप्सिता से कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की, और वैसे भी एग्जाम तुम्हारे 15 दिनों के बाद है ना, तो 15 दिनों बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी आप कहीं नहीं जाएंगी। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसका दिल टूट गया और वो बड़ी ही हैरानी से अपनी माँ पिता की तरफ देखते हुए बोली, क्या बोल रही हैं माँ आप? हमें अपने एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है, तो हम अगर अभी चली जाएंगी तो उसमें समस्या ही क्या है? इप्सिता के पिता ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, आप समझने की कोशिश करिए, अभी आपका कहीं भी जाना ठीक नहीं है। आप अब सूर्यवंशी राज परिवार की बहू बनने वाली हैं, इसलिए हम आपको कहीं पर भी इस तरह अकेले नहीं भेज सकते। इप्सिता हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगी। क्रमशः